गीता किसी खास इंसान, जात, तबका, मसलक, वक्त, जगह या किसी कदामत पसंद फिरके की किताब नहीं है, बल्कि ये आलमगीर और दायमी दीनी शरीयत है। ये हर एक मुल्क, हर एक जात, हर एक उम्र के औरत व मर्द सबके लिए है। दर हकीकत गीता दुनिया के सभी इंसानों की दीनी शरीयत है, और फख्र की बात है कि गीता आपकी दीनी शरीयत है।
ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद गीता।
अथ चतुर्थो अध्याय, चौथा बाब। बाब तीन में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने यकीन दिलाया था कि कोताह नजरी से अलग हटकर जो भी इंसान अकीदत के साथ मेरे उसूल के मुताबिक चलेगा, वो अमाल की बंदिश से अच्छी तरह आजाद हो जाएगा। अमल की कायद से आजादी दिलाने की सलाहियत जोग यानी इल्मी जोग ख्वाह अमली जोग दोनों में है। जोग में ही जंग की तहरीक मुजमिर है। पेश करदा बाब में वो बताते हैं कि इस जोग का तख्लीक कार कौन है, इसकी बसिलसिला तरक्की कैसे होती है। श्री भगवान वाचा।
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत।
अर्जुन, मैंने इस जोग को बदलाव के शुरुआती दौर में विवस्वान यानी सूरज के मुतालिक कहा। सूरज ने मौर्य से अव्वल मनु से और मौर्य से अव्वल मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने कहा। श्री कृष्ण कौन थे? एक जोगी। उनसुर में कायम अजीम इंसान ही इस लाफानी जोग को बदलाव के शुरुआती दौर में यानी याद इलाही के शुरुआती दौर में विवस्वान यानी जो मजबूर हैं ऐसे लोगों से कहता है, सांस में मुतहरिक कर देता है। यहां सूरज एक अलामत है, क्योंकि सांस सुरा में वो बशक्ल नूर है और वहीं उसके पाने का तरीका है। हकीकी नूर अता करने वाला सूरज वही है। ये जोग लाफानी है। श्री कृष्ण ने कहा था, इसमें शुरुआत का खात्मा नहीं होता है। इस जोग की शुरुआत भर कर दें तो ये कामिल बनाकर ही दम लेता है। जिस्म का बदलाव कल्प दवाओं के जरिए होता है, लेकिन रूह का बदलाव याद इलाही से होता है। याद इलाही की शुरुआत ही रूहानी बदलाव की इब्तिदा है। ये रियाजत याद भी किसी अजीम इंसान की ही देन है। लगाव की तारीकी में बेहोश इब्तदाई इंसान जिसमें याद इलाही का तासुर यानी संस्कार नहीं है, जोग के बारे में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा इंसान किसी अजीम इंसान को देखता है तो महज उसके दीदार से, उसकी पाक जबान से, मामूली खिदमत और कुर्बत से जोग के तासुरात उसमें मुतहरिक हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ते सब भये परम पद जोगू। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जोग के मुतालिक मैंने शुरू में सूरज से कहा, चक्षोह सूर्य अजायत। अजीम इंसान की महज नजर पड़ जाने से जोग के तासुरात सूरा सांसों में मुतहरिक हो जाते हैं। रोशन जमीर कादिर मुतलक का मकाम सबके दिल में है। सांसों पर काबू पाने के बाद ही उसके हुसूल का तरीका है। सांस में तासुरात की तकलीफ ही सूरज के मुतालिक कहना है। वक्त आने पर यह तासुर मन में हरकत में होगा, यही सूरज का मौर्य से अव्वल मनु से कहना है। मन में हरकत अंदाज होने पर अजीम इंसान के उस जुमले के मुतालिक ख्वाहिश जाग जाएगी। अगर मन में कोई बात है तो उसे पाने की ख्वाहिश जरूर होगी, यही मौर्य से अव्वल का इक्ष्वाकू से कहना है कि चाहत होगी कि वो मुअय्यना अमल करें जो लाफानी है, जो अमल की बंदिश से निजात दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए, और इबादत रफ्तार पकड़ लेती है। रफ्तार पकड़कर ये जोग कहां पहुंचाता है, इस पर फरमाते हैं,
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप।
इस तरह किसी अजीम इंसान के जरिए तासुरात से खाली इंसानों की सांस में, सांस से मन में, मन से ख्वाहिश में, और ख्वाहिश तेज होकर अमली जामे में ढलकर ये जोग के सिलसिले को हासिल कर लेती है। ये जोग सिलसिलेवार तरक्की करते करते शाही आरिफ के दर्जे तक पहुंच जाता है, उस हालत में पहुंचकर जाहिर होता है। इस सतह के रियाजत कश में माल और जर के जखीरों और कामयाबियों की हरकत होती है। वो जोग इस अहम दौर में इसी आलम जिस्म में उमूमन बर्बाद हो जाता है। इस हदे लकीर को कैसे पार किया जाए, क्या इस खास मकाम पर पहुंचकर सभी खत्म हो जाते हैं? श्री कृष्ण फरमाते हैं, नहीं, जो मेरी पनाह में है, मेरा मंजूर नजर है, ला शरीक दोस्त है, वो खत्म नहीं होता।
स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्।
वही ये कदीमी जोग अब मैंने तेरे वास्ते बयान किया है, क्योंकि तू मेरा बंदा और दोस्त है, और ये जोग बेहतरीन वो पुर असरार है। अर्जुन क्षत्रिय दर्जे का रियासत कश था, शाही आरिफ की हालत वाला था, जहां माल और जर की खुशहाली और कामयाबियों के थपेड़े में रियासत कश बर्बाद हो जाता है, इस दौर में भी जो इफादी हालत में ही है, लेकिन आम तौर पर रियासत कश यहां पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे लाफानी लेकिन राज बस्ता जोग के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि बर्बाद होने की हालत में अर्जुन था ही। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा बंदा है, ला शरीक ख्याल से मेरी पनाह में है, मंजूर नजर है, दोस्त है। बाप की इब्तिदा में बंदा परवर ने फरमाया कि इस लाफानी जोग को कल्प की शुरुआत में मैंने ही सूरत से कहा था। सूरत से मौर्य से अव्वल मनु को यही गीता हासिल हुई। मनु ने इसे अपनी स्मृति याददाश्त में महफूज किया। मनु से यही याददाश्त इक्ष्वाकु को हासिल हुई, जिसे शाही आरिफों राजर्षियों ने जाना। लेकिन इस अहम दौर से जो जोग पोशीदा हो गया था, इसी कदीम इल्म याददाश्त स्मृति को बंदा परवर ने अर्जुन से कहा। लुब्बे लबाब यह है कि मनु को जो इल्म हासिल हुआ था वही यह गीता है। मनु को यही विरासत में हासिल हुआ था, इसके अलावा किस याददाश्त स्मृति को वो कबूल करते। इल्म गीता, गीता ज्ञान सुनने के बाद 18वें बाब के आखिर में अर्जुन ने कहा कि मुझे याददाश्त स्मृति हासिल हुई है, जैसे मनु को हासिल हुई थी। ये श्रीमद् भगवत गीता ही खालिस याददाश्त मनु मनुस्मृति है। जिस माबूद की हमें चाहत है वो मुर्शिद रूह मुतलक रूह से यकसा होकर हिदायत देने लगे, तभी हकीकी याद इलाही की शुरुआत होती है। यहां मुहर्रिक की हालत में माबूद और मुर्शिद एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं उसी सतह पर जब खुद माबूद दिल में उतर आए, रोकथाम करने लगें, डगमगाने पर संभालें, तभी मन काबू में हो पाता है। मन बस होई तब ही जब प्रेरक प्रभु बरजी। जब तक माबूद रतबान होकर रूह से यकसा होकर मुहर्रिक की शक्ल में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही माना में दाखिल ही नहीं होता। वो रियाजत कश उम्मीदवार जरूर है, लेकिन उसके पास यादे इलाही कहां। काबिले एहतराम गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हो हम कई मर्तबा बर्बाद होते होते बच गए, माबूद ने ही बचा लिया। माबूद ने इस तरह समझाया, ये कहा, हमने पूछा, महाराज जी क्या परवरदिगार भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? जवाब दिया, हां हो भगवान ऐसे बातचीत करते हैं जैसे हम तुम बातचीत करें, घंटों बातें हों और सिलसिला ना टूटे। हमें उदासी हुई और ताज्जुब हुआ कि परवरदिगार कैसे बोलते होंगे, ये तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, क्यों घबराता है, तुमसे भी बातें करेंगे। लफ्ज ब लफ्ज सच था उनका कहना, और यही दोस्ताना ख्याल का तसव्वुर है, दोस्त की तरह वो मसाइल का हल करते रहें, तभी इस बर्बाद होने वाली हालत से रियाजत कश बच पाता है। अभी तक जोग के मालिक श्री कृष्ण ने किसी अजीम इंसान के जरिए जोग की इब्तिदा, इसमें आने वाली दिक्कतें, उससे बचने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने सवाल किया, अर्जुन उवाच,
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति।
भगवान, आपकी पैदाइश तो अब हुई है और मेरे अंदर सांसों की तहरीक पारीना मुद्दत है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस जोग को याद इलाही के शुरुआती दौर में आप ही ने कहा था। इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान उवाचा,
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।
अर्जुन, मेरे और तेरे तमाम जन्म हो चुके हैं, ऐ आला रियाजत कश, उन सब को तो तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं। रियाजत कश नहीं जानता, वली अल्लाह अजीम इंसान जानता है, गैर मरई के मर्तबे वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। हकीकी शक्ल का हुसूल जिस्मानी हुसूल से जुदा है। मेरी पैदाइश उन आंखों से नहीं देखी जा सकती। मैं ना पैदा होने वाला, गैर मरई, दायमी होते हुए भी जिस्म की बुनियाद वाला हूं। अवधु जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। जिस्म के रहते ही इस उनसुरे आला में दाखिला हासिल किया जाता है, जरा सी भी कमी है तो जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी ही तरह जिस्म वाला ही समझता है। वो बरमहल सवाल रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी अजसाम की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं,
अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया।
मैं लाफानी, बार बार पैदा होने से आजाद और सारे जानदारों की आवाज में मुतहर्रिक होने पर भी खसलत को काबू में करके खुद की कारसाजी से जाहिर होता हूं। एक फितरत तो जहालत है जो कुदरत में ही यकीन दिलाती है। बदजात शक्लों यानी योनियों की वजह बनती है। दूसरी फितरत है खुद की फितरत जो रूह में दाखिला दिलाती है। खुद की शक्ल की पैदाइश की वजह बनती है। इसी को जोग की फितरत भी कहते हैं, जिससे हम अलग हैं। उस बरहक आला शक्ल से ये जोड़ती है, मुलाकात कराती है। इस रूहानी तरीके कार के जरिए मैं अपनी इन तीन सिफात वाली कुदरत को काबू में करके ही जाहिर होता हूं। आमतौर से लोग कहते हैं कि माबूद का इक्तिबास यानी अवतार होगा तो दीदार कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख ले। हकीकी शक्ल की पैदाइश जिस्म की शक्ल में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जोग की रियाजत के जरिए खुद की फितरत के वसीले से अपने तीनों सिफात वाली खसलत को अपने काबू में करके मैं बतसलसल जाहिर होता हूं। लेकिन किन हालात में?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
ऐ अर्जुन, जब जब हकीकी दीन परवर दिगार के मलाल से भर जाता है, जब बेदीनी के इजाफे से अकीदतमंद इंसान अपने आप को बचता हुआ नहीं देख पाता, तब मैं रूह की तकलीफ करने लगता हूं। ऐसी ही बेकरारी मौरी से अव्वल मनु को हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। जब आपका दिल इश्क हकीकी से लबरेज हो जाए, उस दायमी हकीकी दीन के लिए गद गद गिरा नयन बह नीरा की हालत आ जाए, जब लाख कोशिशों के बावजूद भी आशिक बेदीनी से बच नहीं पाता, ऐसी हालत में मैं अपनी हकीकी शक्ल की तकलीफ करता हूं। यानी परवरदिगार के अवतार खुदा रसीदा इंसान सिर्फ उसके तलबगार के लिए है। सो केवल भगतन हित लागी। ये अवतार खुदा रसीदा इंसान किसी खुशकिस्मत रियाजत कश के बातिन में होता है। आप जाहिर होकर करते क्या हैं?
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अर्जुन, साधु नाम परित्राणाय, मतलूब कुल्ली वाहिद माबूद है, जिसे हासिल कर लेने पर कुछ भी हासिल करना बाकी नहीं रहता। उस मतलूबा में दाखिला दिलाने वाले इरफान, तर्क दुनिया, सरकूबी, नफ्स खुशी वगैरह रूहानी दौलत को बिला खलल मुतहर्रिक करने के लिए, और दुष्कृताम जिससे बुरे काम सरजद होते हैं, उन ख्वाहिश गुस्सा हसद व अदावत وغیرہ غیر نسلی خصائل کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اور دین کو اچھی طرح قائم کرنے کے لیے میں ہر دور میں ظاہر ہوتا ہوں۔ دور کا مطلب ست یگ، تریتا، دواپر میں نہیں۔ دور کے فرائض کا اتار چڑھاؤ انسانوں کے خصائل پر منحصر ہے۔ دور فرائض ہمیشہ رہے ہیں، رام چرت مانس میں اشارہ ہے۔ نت جگ دھرم ہو ہی سب کے رے، ہردے رام مایا کے پریرے۔ دور فرائض سبھی کے دل میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، جہالت سے نہیں بلکہ علم سے۔ رام مایا یعنی رام کی توفیق سے دل میں ہوتے ہیں، جسے پیش کردہ شلوک میں خود کی فطرت کہا گیا ہے، وہی ہے رام مایا یعنی کارسازی۔ دل میں رام کا مقام حاصل کرانے والا، رام سے ترغیب یافتہ ہے وہ علم۔ کیسے سمجھا جائے کہ اب کون سا دور کام کر رہا ہے؟ تو سدھ ستو سمتا وگیان کرت پربھاؤ پرسن من جانا۔ جب دل میں پاک ملکات فاضلہ ہی متحرک ہو، ملکات ردیا اور ملکات مضموم دونوں خاموش ہو جائیں، غیر مساوات ختم ہو گئی ہوں، جس کی کسی سے عداوت نہ ہو، علم اعلیٰ ہو یعنی معبود سے ہدایت لینے اور اس پر قائم رہنے کی صلاحیت ہو، من میں پوری طرح خوشی ہو، جب ایسی صلاحیت آ جائے تب دور حقیقی یعنی ست یگ میں داخلہ مل گیا۔ اسی طرح دوسرے دو دوروں کا بیان کیا اور آخر میں تامس بہت رجو گن تھورا، کلی پربھاو ویرودھ چہوں اورا۔ ملکات مضمومی لبریز ہوں، تھوڑے ملکات ردیا بھی اس میں ہوں، چاروں طرف دشمنی اور مخالفت ہو تو ایسا انسان دور گناہ کا یعنی کلیوگین ہے۔ جب ملکات مضموم کام کرتا ہے تو انسان میں تساہلی، نیند، مدہوشی کی زیادتی ہوتی ہے، وہ اپنا فرض جانتے ہوئے بھی اس میں نہیں لگ سکتا، ممنوع کاموں کو جانتے ہوئے بھی ان سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح دور فرائض کا اتار چڑھاؤ انسانوں کی باطنی لیاقت پر منحصر ہے۔ کسی نے ان صلاحیتوں کو چار دور یعنی یگ کہا ہے تو کوئی انہیں ہی چار نسلوں کا نام دیتا ہے، تو کوئی انہیں ہی بہترین، بہتر، اوسط اور بدترین چار درجات کے ریاضت کش کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ہر دور میں معبود ساتھ دیتے ہیں، ہاں اونچے درجے میں مطابقت پوری طور سے ظاہر ہوتی ہے، نیچے کے درجات جگہوں میں مدد کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مختصر میں شری کرشن کہتے ہیں کہ معبود کا دیدار عطا کرانے والے عرفان ترک دنیا وغیرہ کو بلا کسی خلل کے متحرک کرنے کے لیے اور برائیوں کے وجوہات، خواہش، غصہ، حسد، عداوت وغیرہ کا پوری طور سے خاتمہ کرنے کے لیے، اعلیٰ دین معبود میں ساکن رکھنے کے لیے، میں ہر دور میں یعنی ہر حالت میں، ہر درجات میں ظاہر ہوتا ہوں، بشرطے کہ انسان میں بے قراری ہو۔ جب تک معبود تائید نہ کرے تب تک آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ عیوب کا خاتمہ ہو، خواہ ابھی کتنا باقی ہے۔ ابتدا سے انتہا تک معبود ہر سطح پر اپنی ہر صلاحیت کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا ظہور عاشق کے دل میں ہوتا ہے۔ معبود ظاہر ہوتے ہیں تب تو سبھی دیدار کرتے ہوں گے۔ شری کرشن کہتے ہیں نہیں۔
جنم کرم چمے دیویم ایوم یو ویتی تتوتہ تیکتوہ دیہم پنرجنم نیتی مامیتی سورجن۔
ارجن، میری وہ پیدائش یعنی کہ بےقراری کے ساتھ اعلی شکل کی تخلیق، اور میرا عمل یعنی برے کاموں کے وجوہات کا خاتمہ، مطلوبہ مقصد کو حاصل کرانے والی صلاحیتوں کی بے عیب حرکت، فرض کا استقلال، یہ عمل اور پیدائش روشن زدہ یعنی ماورائی ہے، دنیاوی نہیں ہے، ان عام آنکھوں سے قابل نظارہ نہیں ہے، دل و دماغ سے اسے ناپا نہیں جا سکتا، جب اتنا دقیق ہے تو اسے دیکھتا کون ہے؟ یو ویتی تتوتہ، محض اہل بصیرت ہی میرے اس جنم اور عمل کو دیکھتا ہے، اور میرا دیدار کر کے اسے بار بار جنم لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مجھ میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ جب اہل بصیرت ہی معبود کے جنم اور کام کو دیکھ پاتا ہے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہجوم میں کیوں کھڑے ہیں کہ کہیں اوتار ہوگا تو دیدار کریں گے؟ کیا آپ اہل بصیرت ہیں؟ عابد کی شکل میں آج بھی مختلف طریقوں سے، خاص طور پر عابدوں کے لباس کے پردے میں، بہت سے لوگ تشہیر کرتے پھرتے ہیں کہ وہ اوتار ہیں، یا ان کے دلال تشہیر کر دیتے ہیں۔ لوگ بھیڑ کی طرح خدا رسیدہ انسان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ شری کرشن کہتے ہیں کہ صرف اہل بصیرت ہی دیکھ پاتا ہے۔ اب اہل بصیرت کسے کہتے ہیں؟ باب دو میں حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن نے بتایا تھا کہ ارجن باطل کا وجود نہیں ہے، اور حق کی تینوں دوروں میں کبھی کمی نہیں، تو کیا آپ ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا، نہ ہی اہل بصیرت حضرات نے اسے دیکھا، نہ کسی اہل زبان نے دیکھا، نہ کسی امیر نے دیکھا۔ یہاں پھر زور دیتے ہیں کہ میرا ظہور تو ہوتا ہے، لیکن اسے اہل بصیرت ہی دیکھ پاتا ہے۔ اہل بصیرت ایک سوال ہے، ایسا کچھ نہیں کہ پانچ عناصر ہیں، 25 عناصر ہیں، ان کی شماری سیکھ لی اور ہو گئے اہل بصیرت۔ شری کرشن نے آگے بتایا کہ روح ہی اعلی عنصر ہے، روح اعلی سے مزین ہو کر روح مطلق ہو جاتی ہے، خود شناس ہی اس ظہور کو سمجھ پاتا ہے۔ ثابت ہے کہ اوتار کسی بے قرار عاشق کے دل میں ہوتا ہے، شروع میں وہ اسے سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیں اشارہ دینے والا کون ہے، کون رہنمائی کرتا ہے، لیکن عنصر اعلی معبود کے دیدار کے ساتھ ہی وہ دیکھ پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے، اور پھر جسم کو ترک کرنے کے بعد دوبارہ جنم لینے سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ شری کرشن نے کہا کہ میری پیدائش ماورائی ہے، اسے دیکھنے والا مجھے حاصل ہوتا ہے، تو لوگوں نے ان کا بت بنا لیا، عبادت کرنے لگے، آسمان میں کہیں ان کے رہنے کی جگہ کا تصور کر لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ان عظیم انسانوں کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اگر آپ معینہ عمل کریں تو پائیں گے کہ آپ بھی پر نور یعنی ماورائی ہیں، آپ جو ہو سکتے ہیں وہ میں ہو گیا ہوں، میں آپ کا امکان ہوں، آپ کا ہی مستقبل ہوں۔ اپنے اندر آپ جس دن ایسی تکمیل پالیں گے تو آپ بھی وہی ہوں گے جو شری کرشن ہے، جو شری کرشن کا مقام ہے وہی مقام آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اوتار کہیں باہر نہیں ہوتا، ہاں اگر انسیت سے لبریز دل ہو تو آپ کے اندر بھی اوتار کا احساس ممکن ہے، وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس راہ حقیقی پہ چل کر میرے مقام کو حاصل کر چکے ہیں۔
राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता।
उन्सियत और बैराग दोनों से ला ताल्लुक, बेगरज और उसी तरह खौफ बेखौफ, खफगी بے خفگی دونوں سے ماورا لا شریک احساس کے ساتھ، یعنی بلا غرور کے میری پناہ میں آئے ہوئے بہت سے لوگ علم اور ریاضت کی برکت سے پاک ہو کر میرے مقام کو حاصل کر چکے ہیں۔ اب ایسا ہونے لگا ہو ایسی بات نہیں ہے، یہ اصول ہمیشہ سے رہا ہے۔ بہت سے انسان اسی طرح سے میرے مقام کو حاصل کر چکے ہیں۔ کس طرح؟ جن جن لوگوں کا دل بے دینی کا اضافہ دیکھ کر معبود کے لیے بے قراری سے بھر گیا، اس حالت میں میں اپنے مقام کی تخلیق کرتا ہوں، وہ میرے مقام کو حاصل کرتے ہیں، جسے جوگ کے مالک شری کرشن نے رمز شناسی کہا تھا، اسے ہی اب علم کہتے ہیں۔ عنصر اعلی ہے معبود، اسے بدی ہی دیدار کے ساتھ جاننا علم ہے۔ اس طرح کا علم رکھنے والے عالم میرے مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پورا ہو گیا، اب وہ صلاحیت کی بنیاد پر یاد الہی میں مصروف ہونے والے لوگوں کا درجہ بانٹتے ہیں۔
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
पार्थ, जो मुझे जितनी लगन के साथ जैसे याद करते हैं मैं भी वैसे ही याद करता हूं، اسی کے مطابق اتنی ہی تعداد میں مدد مہیا کرتا ہوں۔ ریاضت کش کی عقیدت ہی میری عنایت کی شکل میں اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس راز کو سمجھ کر باہوش لوگ پورے خلوص کے ساتھ میرے اصولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ جن اصولوں پر میں خود عمل پیرا ہوں، جو مجھے محبوب ہیں، ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ جو میں کرانا چاہتا ہوں وہی کرتے ہیں۔ معبود کیسے یاد کرتے ہیں؟ ورت باندھ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ یہی ان کا یاد کرنا ہے، جن سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں داخلہ دلانے والی نیک خصائل کی حفاظت کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک معبود دل سے پوری طرح رت باندھ نہ ہوں اور ہر قدم پر ہوشیار نہ کریں، تب تک چاہے جیسا بھی یاد الہی کا لطف اٹھانے والا کیوں نہ ہو، لاکھ تصور کرے، لاکھ کوشش کرے، وہ اس قدرت کے فساد سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے سمجھے گا کہ ہم کتنا فاصلہ طے کر چکے، کتنا باقی ہے؟ بھگوان ہی روح سے جڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ تم اس جگہ پر ہو، اس طرح کرو، اس طرح چلو، اس طرح دنیا کی کھائیوں کو پاٹتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے مقام تک پہنچا دیں گے۔ عبادت تو ریاضت کش کو کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن اس کے ذریعے اس راہ میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے وہ معبود کی عنایت ہے۔ ایسا جان کر سارے انسان پورے خلوص کے ساتھ میری اتباع کرتے ہیں۔ کس طرح سے وہ برتاؤ کرتے ہیں؟
کانکشنتہ کرمنام سدھیم یجنت ایہ دیوتاہ کشپرم ہی مانوشے لوکے سدھر بھوتی کرم جا۔
وہ انسان اس جسم میں اعمال کی کامیابی چاہتے ہوئے ملائک کی عبادت کرتے ہیں، کون سا عمل؟ شری کرشن نے کہا، ارجن تو معینہ عمل کر۔ معینہ عمل کیا ہے؟ یگیہ کا طریقہ کار ہی معینہ عمل ہے۔ یگیہ کیا ہے؟ ریاضت کا خاص طریقہ، جس میں تنفس کی آمیزش، حواس کے خارجی روانی کو نفس کشی کی آگ میں ہون کیا جاتا ہے، جس کا ثمرہ ہے معبود۔ अमल का खालिस मतलब है इबादत, जिसकी हकीकी शक्ल इसी बाब में आगे मिलेगी। इस इबादत का नतीजा क्या है? संसिद्धिम, आला कामयाबी माबूद, यांति ब्रह्म सनातनम, दायमी रब में दाखिला है, बेगरज आला अमल की हालत। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे मुताबिक बर्ताव करने वाले लोग इस दुनिया में अमल के नतीजे आला बेगरज अमल की कामयाबी के लिए मलाइक की इबादत करते हैं, यानी रूहानी दौलत को मजबूत बनाते हैं। तीसरे बाब में उन्होंने बताया था कि इस यज्ञ के जरिए तू मलाइक का इजाफा कर, रूहानी दौलत को मजबूत बना। जैसे जैसे दिल की दुनिया में रूहानी दौलत का इजाफा होगा, वैसे वैसे तेरी तरक्की होगी। इस तरह एक दूसरे की तरक्की करते हुए आला शरफ को हासिल कर, आखिर तक तरक्की करते जाने का यह बातिनी अमल है। इसी पर जोर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मुवाफिक बर्ताव करने वाले लोग इस इंसानी जिस्म में अमल की कामयाबी चाहते हुए रूहानी दौलत को ताकतवर बनाते हैं, जिससे वो बेगरज अमल वाली कामयाबी जल्द मिल जाती है। वो नाकामयाब नहीं होती, कामयाब ही होती है। जल्द का क्या मतलब? क्या अमल में लगते ही फौरन उसी वक्त ये आला कामयाबी हासिल हो जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस जीने पर बतदरीज चढ़ने का तरीका है। कोई छलांग मारकर एहसास से मुबर्रा मुराकिबे जैसा मोजिजा नहीं होता। इस पर देखें,
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्।
अर्जुन, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, चार नस्लों की तखलीक मैंने की, तो क्या इंसानों को चार हिस्सों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभागश, सिफात के मद्देनजर अमल को चार हिस्सों में बांटा। सिफात एक पैमाना है, कसौटी है। मलकाते मजमूम होगा तो तसाहुली, नींद, मदमस्ती, अमल में ना लगने की खसलत, जानते हुए भी ममनुआत से ना बच पाने की मजबूरी रहेगी। ऐसी हालत में रियाजत शुरू कैसे करें? 2 घंटे आप इबादत में बैठते हैं, इस अमल के लिए कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन 10 मिनट भी अपने मवाफिक नहीं पाते। जिस्म जरूर बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, दलील नाकिस का जाल बुन रहा है, पिनक पर पिनक छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? उस वक्त सिर्फ परिचर्यात्मकम कर्म शुद्र स्यापी स्वभावजम, जो अजीम इंसान गैर मरई की हालत वाले हैं, लाफानी उनसुर में कायम हैं, उनकी और उस राह पर चलने वाले खुद से बेहतर लोगों की खिदमत में लग जा, इससे नाकिस तासुरात संस्कार खत्म हो जाएंगे, रियाजत में दाखिला दिलाने वाले तासुरात मजबूत हो जाएंगे। धीरे धीरे मलकाते मजमूम कम होने पर मलकाते रद्दिया की अहमियत और मलकाते फाजिला की मामूली तहरीक के साथ रियाजत कश की सलाहियत वैश्य दर्जे की होती है। उस वक्त वही रियाजत कश जब्त नफ्स रूहानी दौलत का हुसूल कुदरती तौर पर करने लगेगा। अमल करते करते उसी रियाजत कश में मलकाते फाजिला की इफरात हो जाएगी, मलकाते रद्दिया कम रह जाएंगे, मलकाते मजमूम खामोश रहेंगे। उस वक्त वही रियाजत कश क्षत्रिय दर्जे में दाखिला पालेगा। बहादुरी, अमल में लगे रहने की सलाहियत, पीछे ना हटने की खसलत, सारे एहसासात पर मालिकाना एहसास, قدرت کے تینوں صفات کو کاٹنے کی صلاحیت اس کی فطرت میں ڈھل جائے گی۔ وہی عمل اور لطیف ہونے پر، محض ملکاتِ فاضلہ متحرک رہ جانے پر، من پر قابو، نفس کشی، یکسوئی، سیدھاپن، تصور، مراقبہ، خدائی ہدایت، دینداری وغیرہ پروردگار سے نسبت دلانے والی فطری صلاحیت کے ساتھ وہی ریاضت کش برہمن درجے کا کہا جاتا ہے۔ یہ برہمن درجے کے عمل کی سطحی حد ہے۔ جب وہی ریاضت کش معبود کے ساتھ نسبت پا لیتا ہے، اس آخری حد میں وہ خود میں نہ برہمن رہتا ہے، نہ شتری، نہ ویش، نہ شدر، لیکن دوسروں کی رہنمائی کے لیے وہی برہمن ہے۔ عمل ایک ہی ہے، معینہ عمل، عبادت۔ حالات کے فرق سے اسی عمل کو اونچے اونچے چار درجات میں بانٹا۔ کس نے بانٹا؟ کسی جوگ کے مالک نے بانٹا، غیر مرئی مقام والے عظیم انسان نے بانٹا۔ اس کے کرنے والے مجھ لافانی کو نہ کرنے والا ہی جان۔ کیوں؟
نمام کرمانی لمپنتی نمے کرم فلے سپرہا इतिमां यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते।
क्योंकि आमाल के समरे में मेरी ख्वाहिश नहीं है। अमल का समरा क्या है? श्री कृष्ण ने पहले बताया था कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस हरकत का नाम अमल है, और दौरे तकमील में यज्ञ जिसकी तकलीफ करता है اس علمی نوشاب کو حاصل کرنے والا دائمی ابدی خدا میں داخلہ پا لیتا ہے۔ عمل کا ثمرہ ہے روح مطلق۔ اس روح مطلق کی خواہش بھی اب مجھے نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھ سے جدا نہیں۔ میں غیر مرئی شکل ہوں، اسی کے مقام والا ہوں۔ اب آگے کوئی اقتدار نہیں ہے۔ جس کے لیے اس عمل سے دلچسپی رکھوں، لہذا اعمال میرے ساتھ ملوث نہیں ہوتے، اور اسی سطح سے جو بھی مجھے جانتا ہے، یعنی جو اعمال کے ثمرہ روح مطلق کو حاصل کر لیتا ہے، اسے بھی اعمال نہیں باندھتے۔ جیسے شری کرشن، ویسے اس سطح سے جاننے والا عظیم انسان۔
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्।
अर्जुन, पहले गुजारने वाले निजात के तलबगार इंसानों के जरिए भी यही समझकर अमल किया गया۔ کیا سمجھ کر؟ یہی کہ جب اعمال کا ثمرہ روح مطلق الگ نہ رہ جائے، اعمال کے ثمرے روح مطلق کی آرزو نہ رہ جانے پر اس انسان کو اعمال نہیں باندھتے۔ شری کرشن اسی مقام والے ہیں، لہذا وہ عمل میں ملوث نہیں ہوتے، اور اسی سطح سے ہم جان لیں گے تو ہمیں بھی عمل نہیں باندھے گا، یعنی ہمارے لیے بھی عمل کی بندش نہیں ہوگی۔ جیسے شری کرشن ٹھیک اسی سطح سے جو بھی جان لے گا، ویسا ہی وہ انسان بھی عمل کی بندش سے آزاد ہو جائے گا۔ اب شری کرشن معبود، مرد حق، غیر مرئی، مالک جوگ، خواہ اعلی جوگ کے مالک جو بھی رہے ہوں، وہ مقام سب کے لیے ہے۔ یہی سمجھ کر پہلے کے نجات کی خواہش رکھنے والے انسانوں نے عمل کے راستے پر قدم رکھا۔ لہذا ارجن، تو بھی آبا و اجداد کے ذریعے ہمیشہ سے کیے ہوئے اسی عمل کو کر، یہی واحد نجات کا راستہ ہے۔ ابھی تک جوگ کے مالک شری کرشن نے عمل کرنے پر زور دیا، لیکن یہ صاف نہیں کیا कि अमल क्या है। बाप दो में उन्होंने महज अमल का नाम लिया कि अब इसी को बेगरज अमल के बारे में सुन। उसकी सिफात का बयान किया कि ये जन्म और मौत के बहुत बड़े खौफ से हिफाजत करता है। अमल करते वक्त एहतियात का बयान किया लेकिन ये नहीं बताया कि अमल क्या है। बाप तीन में उन्होंने कहा कि राह इल्म अच्छा लगे या बेगरज अमली जो, अमल तो करना ही पड़ेगा। आमाल को तर्क कर देने से ना कोई आलिम होता है और अमल को ना शुरू करने से बेअमल। बजिद होकर जो नहीं करते वो तकब्बुर करने वाले हैं। लिहाजा मन से हवास को काबू में करके अमल कर। कौन सा अमल करें? तो जवाब दिया, मुअय्यना अमल कर। अब ये मुअय्यना अमल है क्या? तो बोले, यज्ञ का तरीक़ेकार ही मुअय्यना अमल है। एक नया सवाल खड़ा किया कि यज्ञ क्या है, जिसे करें तो अमल हो जाए। वहां भी यज्ञ की तख्लीक बताई, उसकी सिफात का बयान किया लेकिन यज्ञ नहीं बताया जिससे अमल को समझा जा सके। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि अमल क्या है। अब कहते हैं कि अर्जुन, कर्म अमल क्या है, ला अमल अकर्म क्या है, इस बारे में बड़े बड़े आलिम भी गुमराह हैं। उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।
किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभम्।
अमल क्या है और ला अमल क्या है, इसके मुतालिक दानिशमंद इंसान भी फरेफ्ता हैं। लिहाजा मैं उस अमल के बारे में तुझे अच्छी तरह बताऊंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, नामुबारक यानी दुनियावी बंदिश से अच्छी तरह आजाद हो जाएगा। अमल कोई ऐसी चीज है जो दुनियावी बंदिश से आजादी दिलाती है। इसी अमल को जानने के लिए श्री कृष्ण फिर जोर देते हैं।
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः।
अमल की हकीकी शक्ल भी जानना चाहिए। ला अमल की यानी अकर्म बेरौनक शक्ल भी समझना चाहिए और खुसूसी अमल यानी बरअक्स तसव्वुर से खाली खुसूसी अमल है जो कामिल इंसानों के जरिए सरजद होता है। इसे भी जानना चाहिए क्योंकि रफ्तार दुश्वार गुजार होती है। चंद लोगों ने विकर्म यानी खुसूसी अमल का मतलब विशिद्ध कर्मा यानी ममनू अमल, मन लगाकर किया गया अमल वगैरह लगाया है। दर हकीकत यहां विसाबिक यानी उपसर्ग खासियत का इजहार करने के लिए है। हुसूल के बाद अजीम इंसानों के अमल बरअक्स तसव्वुर होते हैं। खुद कफील, खुद मुतमईन, खुद आसूदा अजीम इंसानों को ना तो अमल करने से कोई फायदा और न छोड़ने से कोई नुकसान ही है, फिर भी वो अपने फरमा बरदारों की भलाई के लिए अमल करते हैं। ऐसा अमल बरअक्स तसव्वुर से खाली है, जाहिर है, और यही अमल खुसूसी कहलाता है। बतौर मिसाल गीता में जहां कहीं भी किसी लफ्ज से पहले वी उपसर्ग साबिका लगा है उसकी खासियत को जाहिर करने वाला है, खराबियों का नहीं। जैसे योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः, जो योग से मुजयन है वो खास तौर से मुकद्दस रूह वाला, खास तौर से काबू याफ्ता बातिन वाला वगैरह खासियत का इजहार करने वाले हैं। इसी तरह गीता में जगह जगह पर तमाम अल्फाज के पहले वी साबिके का इस्तेमाल हुआ है, जो तकमील खास की अलामत है। इसी तरह खुसूसी अमल भी मखसूस अमल की निशानी है, जो हुसूल के बाद अजीम इंसानों के जरिए सरजद होता है, जो मुबारक या नामुबारक तासुर नहीं डालता। अभी आपने खुसूसी अमल देखा, रहा कर्म अमल और ला अमल, जिसे अगले श्लोक में समझने की कोशिश करें। अगर यहां अमल और ला अमल का फर्क नहीं समझ सकें तो कभी नहीं समझ सकेंगे।
कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्।
जो इंसान अमल में ला अमल देखें, अमल का मतलब है इबादत, यानी इबादत करें और ये भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि सिफात की हालत ही हमें गौर व फिक्र में लगाती है, मैं माबूद की तंजीम में हूं, ऐसा समझे। और जब इस तरह ला अमल यानी अमल का अदम एहसास देखने की सलाहियत आ जाए और मुसलसल अमल होता रहे, तभी समझना चाहिए कि अमल सही तरह से हो रहा है। वही इंसान इंसानों में अकलमंद है, इंसानों में जोगी है, जोग से मुजयन अकल वाला है और सारे आमाल का कारकुन है। उसके जरिए अमल करने में जरा सी भी खामी नहीं रह जाती। लुब्बे लबाब ये कि इबादत ही अमल है, उस अमल को करें और करते हुए ला अमल देखें कि मैं तो महज मशीन हूं, कराने वाला तो माबूद है और मैं सिफात से पैदा होने वाली हालत के मुताबिक ही कोशिश कर पाता हूं। जब ला अमल की यह सलाहियत आ जाए और मुसलसल अमल होता रहे, तभी आला इफादे की हालत दिलाने वाला अमल हो पाता है। काबिले एहतराम महाराज जी कहा करते थे कि जब तक माबूद रथबान ना हो जाएं, रोकथाम ना करने लगें, तब तक सही तौर से रियाजत की शुरुआत ही नहीं होती। इसके पहले जो कुछ भी किया जाता है, अमल में दाखिला पाने की कोशिश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हल्का सारा वजन बैलों के कंधों पर ही रहता है, फिर भी खेत की जुताई हल वाले की देन है। ठीक इसी तरह रियाजत का सारा वजन रियाजत कश के ऊपर ही रहता है, लेकिन हकीकी रियाजत कश तो माबूद है, जो इसके पीछे लगा हुआ है, जो उसकी रहनुमाई करता है। जब तक माबूद फैसला ना दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या, हम दुनिया में भटक रहे हैं या माबूद में। इस तरह माबूद की रहनुमाई में जो रियाजत कश इस रूहानी राह पर आगे बढ़ता है, खुद को ना करने वाला समझकर मुसलसल अमल करता है, वही अकलमंद है, उसकी जानकारी हकीकी है, वही जोगी है। तजस्सुस फितरी है कि अमल करते ही रहेंगे या कभी आमाल से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर जोग के मालिक कहते हैं, ये श्री कृष्ण के मुताबिक जो कुछ किया जाता है अमल नहीं है, अमल एक मुअय्यन किया हुआ तरीका है। नियतम कुरु कर्मत्वम, अर्जुन तू मुअय्यना अमल को कर। मुअय्यना अमल है क्या? तब बताया, यज्ञार्थात कर्मणो नियत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ को अमली जामा पहनाना ही अमल है, तो इसके अलावा जो कुछ भी किया जाता है क्या वो अमल नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। इस यज्ञ को अमली शक्ल देने के सिवा जो कुछ भी किया जाता है वो इसी दुनिया की बंदिश है, ना कि अमल। तदर्थ कर्म, अर्जुन उस यज्ञ की तकमील के लिए अच्छी तरह कारबंद हो। जहां तक यज्ञ की शक्ल की बात है, तो वो खालिस तौर पर इबादत का एक खास तरीका है जो उस माबूद तक पहुंचाकर उसमें मुनासिबत दिला देता है। इस यज्ञ में जब्त नफ्स, मन पर काबू, रूहानी दौलत का हुसूल वगैरह बताते हुए आखिर में कहा, बहुत से जोगी जान और रियाह की हरकत पर काबू करके हफ्से दम के हामिल हो जाते हैं, जहां ना अंदर से कोई इरादा सर उठाता है और ना बाहरी माहौल से पैदा होने वाले इरादों का मन के अंदर दाखिला हो पाता है। ऐसी हालत में तबीयत की हर तरह से घेराबंदी और घेराबंदी शुदा तबीयत के भी तहलीली दौर में वो इंसान यान्ति ब्रह्म सनातनम दायमी अबदी माबूद में दाखिला पा जाता है। यही सब यज्ञ है जिसे अमली जामा पहनाने का नाम अमल है। लिहाजा अमल का खालिस माने है इबादत, अमल के माने है यादे इलाही, अमल का माना है जोग के रियाजत को अच्छी तरह पूरा करना, जिसका तफसीली बयान इसी बाब में आगे आ रहा है। यहां अमल और ला अमल को महज एक दूसरे से अलग किया गया, जिससे अमल करते वक्त उसे सही शक्ल दी।
यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः।
अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभः, जिस इंसान के जरिए मुकम्मल तौर से शुरू किया गया अमल, यानी जिसे गुज़िश्ता श्लोक में कहा कि ला अमल देखने की सलाहियत आ जाने पर अमल में लगा हुआ इंसान सारे आमाल का करने वाला है, जिसके करने में जरा सी भी खामी नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, सिलसिलेवार तरक्की होते होते इतना लतीफ हो गया कि हवास और मन के अज़्म तसव्वुर से ऊपर उठ गया। ख्वाहिश और इरादों पर काबू पा लेना मन की फतेहयाबी की हालत है। लिहाजा अमल कोई ऐसी चीज है जो इस मन को ख्वाहिश और अज़्म तसव्वुर से ऊपर उठा देता है। उस वक्त ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, आखिरी इरादे की भी बंदिश के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम ख्वाहिशमंद थे, उस माबूद का रूबरू इल्म हो जाता है। अमली राह पर चलकर माबूद की रूबरू जानकारी का नाम ही इल्म है। उस इल्म के साथ ही दग्ध कर्माणम, आमाल हमेशा के लिए नजर आतिश हो जाते हैं। जिसे हासिल करना था हासिल कर लिया, आगे कोई इख्तदार नहीं जिसकी तहकीक करें। लिहाजा अमल करके तलाश करें भी तो किसे, उस जानकारी के साथ अमल की जरूरत खत्म हो जाती है। ऐसे तमाम मकाम वालों को ही रमज शनास अजीम इंसानों ने पंडित यानी आलिम कहकर मुखातिब किया है। उनकी जानकारी मुकम्मल है। ऐसे मकाम पर पहुंचा हुआ अजीम इंसान करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी बूद बाश पर रोशनी डालते हैं।
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः।
अर्जुन, वो इंसान दुनियवी पनाह से आजाद होकर दाइमल वजूद रूहे मुतलक में ही आसूदा रहकर आमाल के समरे रूहे मुतलक की रगबत को भी तर्क कर, क्योंकि रूहे मुतलक भी अब अलग नहीं है, अमल में अच्छी तरह मसरूफ रहकर भी कुछ नहीं करता।
निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।
जिसने बातिन और जिस्म पर काबू पा लिया है, ऐशो इशरत की तमाम चीजें जिसने तर्क कर दी हैं, ऐसे बेलोस इंसान का जिस्म सिर्फ अमल करता दिखाई भर पड़ता है। दरहकीकत वो करता धरता कुछ नहीं, लिहाजा गुनाह का मुर्तकिब नहीं होता, वो कामिल है, लिहाजा आवागोन से मुबर्रा होता है।
यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।
खुद ब खुद जो कुछ भी हासिल हो जाए उसी में मुतमईन रहने वाला, आराम व तकलीफ, हसद और अदावत और खुशी व गम वगैरह के फसाद से मावरा, विमत सरह हसद से खाली और कामयाबी और नाकामयाबी में मुसावी ख्याल वाला इंसान आमाल को करते हुए भी उससे वाबस्ता नहीं होता। कामयाबी यानी जिसे हासिल करना था वो अब जुदा नहीं है और वो कभी जुदा भी नहीं होगा, लिहाजा नाकामयाबी का भी खौफ नहीं है। इस तरह कामयाबी और नाकामयाबी में मुसावी ख्याल वाला इंसान अमल करके भी उससे वाबस्ता नहीं होता। कौन सा अमल वो करता है? वही मुअय्यना अमल, यज्ञ का तरीक़ेकार, उसी को दोबारा कहते हैं।
गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।
अर्जुन, यज्ञ का बर्ताव अमल है और बदी ही दीदार का नाम ही इल्म है। इस यज्ञ का बर्ताव करके बदी ही दीदार के साथ इल्म में कायम, सोहबत असर और लगाव से मावरा आजाद इंसान के तमाम आमाल अच्छी तरह तहलील हो जाते हैं। वो आमाल कोई समरा नहीं दे पाते क्योंकि आमाल का समरा रूह मुतलक उनसे जुदा नहीं रह गया। अब समरे में कौन सा समरा लगेगा? लिहाजा उन आजाद इंसानों को अपने लिए अमल की जरूरत खत्म हो जाती है, फिर भी अवामुन नास के लिए वो अमल करते ही हैं और अमल करते हुए भी वो उन आमाल में मुलविस नहीं होते। जब अमल करते हैं तो मुलविस क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं,
ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना।
ऐसे आजाद इंसान की खुद सुपुर्दगी माबूद है। नजर आतिश के सामान यानी हवि माबूद है, आतिश भी भगवान ही है, यानी माबूद की तमसील आतिश में भगवान की शक्ल वाले कारकुन के जरिए जो हवन नजर आतिश किया जाता है वो भी भगवान है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके अमल माबूद से मुंसलिक होकर मराकिब हो चुके हैं, उसमें तहलील हो चुके हैं, ऐसे अजीम इंसान के लिए जो काबिले हुसूल है वो भी माबूद ही है। वो करता धरता कुछ नहीं, सिर्फ अवामुन नास के लिए अमल में मशगूल रहता है। ये तो हासिल करने वाले अजीम इंसान की निशानियां हैं, लेकिन अमल में दाखिल होने वाले इब्तिदाई दौर के रियाजत कश कौन से यज्ञ करते हैं? गुज़िश्ता बाब में श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन अमल कर। कौन सा अमल? उन्होंने बताया मुअय्यना अमल, मुअय्यन किए हुए अमल को कर। मुअय्यना अमल कौन सा है? यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ का तरीकेकार ही अमल है। इस यज्ञ के अलावा जहां कहीं भी जो कुछ किया जाता है वो इसी दुनिया की बंदिश है, ना कि अमल। अमल तो दुनियावी बंदिश से निजात दिलाता है। लिहाजा तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचार। उस यज्ञ की तकमील के लिए सोहबत के असर से अलग रहकर अच्छी तरह यज्ञ का बर्ताव कर। यहां जोग के मालिक ने एक नया सवाल खड़ा किया कि वो यज्ञ है क्या जिसे करें और अमल हमसे सही तौर से हो सके। उन्होंने अमल की सिफात पर जोर दिया, बताया कि यज्ञ आया कहां से, यज्ञ देता क्या है, उसकी सिफात की अक्कासी की, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया था कि यज्ञ है क्या। अब यहां उसी यज्ञ को साफ करते हैं।
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति।
गुज़िश्ता श्लोक में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने रूहे मुतलक में कायम अजीम इंसान के यज्ञ का तफसील के साथ बयान किया, लेकिन दूसरे जोगी जो अभी इस उनसर में कायम नहीं हुए हैं, अमल में दाखिला लेने वाले हैं, वो शुरुआत कहां से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे जोगी हजरात देवम यज्ञम यानी रूहानी दौलत को अपने दिल में मजबूती देते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा की हिदायत थी कि इस यज्ञ के जरिए तुम लोग अपने अंदर रूहानियत की तरक्की करो। जैसे जैसे दिल की दुनिया में रूहानी दौलत हासिल होगी वही तुम्हारी तरक्की होगी और बतदरीज बाहम तरक्की करके आला शरफ को हासिल करो। रूहानी दौलत को दिल की दुनिया में मजबूत बनाना इब्तदाई दर्जे के जोगियों का यज्ञ है। उस रूहानी दौलत का बाब 16 के शुरू के 3 श्लोकों में बयान है, जो मौजूद तो सब में है, सिर्फ अहम फर्ज समझकर उन्हें जगाएं, उनमें लगें। उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए जोग के मालिक ने कहा कि अर्जुन तू गम मत कर, क्योंकि तू रूहानी दौलत का हामिल है, तू मुझ में मकाम करेगा, मेरे ही दायमी मकाम को हासिल करेगा, क्योंकि ये रूहानी दौलत इंतहाई फलाह के लिए ही है और इसके बरखिलाफ दुनियावी दौलत नीच और बदजात शक्लों यानी योनियों के वजह है। इसी दुनियावी दौलत का हवन यानी नजर आतिश होने लगता है। लिहाजा ये यज्ञ है और यहीं से यज्ञ की इब्तदा है। दूसरे जोगी ब्रह्माग्नो आला माबूद बशक्ल रूह मुतलक आतिश में यज्ञ के जरिए ही यज्ञ का अज़्म करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस जिस्म में मखसूस यज्ञ मैं हूं, यज्ञों का निगरान यानी यज्ञ जिसमें तहलील होते हैं वो इंसान मैं हूं। श्री कृष्ण एक जोगी थे, मुर्शिदे कामिल थे। इस तरह दूसरे जोगी हजरात ब्रह्म की तमसील आतिश में यज्ञ यानी यज्ञ की तमसील मुर्शिद को मकसद बनाकर यज्ञ का अज़्म करते हैं। लुब्बे लुबाब मुर्शिद की शक्ल का तसव्वुर करते हैं।
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।
दूसरे जोगी हजरात कान आंख जिल्द जबान नाक सारे हवास का जब्त नफ्स की आग में हवन करते हैं, यानी हवास को उनके मौजूआत से समेटकर उन पर काबू कर लेते हैं। यहां आग नहीं जलती, जैसे सुपुर्द आतिश होने पर हर चीज जलकर जेरे खाक हो जाती है, ठीक उसी तरह जब्त नफ्स भी एक आग है जो हवास के सारे खारजी असरात को जला डालती है। दूसरे जोगी हजरात शब्दादिक यानि लफ्ज, लम्स, शक्ल, लज्जत, महक, मौजूआत को हवास की तमसीली आग में हवन कर देते हैं, यानि उनकी माहियत बदलकर काबिले रियाजत बना लेते हैं। आमिल को दुनिया में रहकर ही तो याद इलाही करनी है, दुनियावी लोगों के नेक व बद अल्फाज उससे टकराते ही रहते हैं। मौजूआत को जगाने वाले ऐसे अल्फाज को सुनते ही रियाजत कश उनकी माहियत को जोग, बैराग में मददगार, बैराग को बेदार करने वाले जज्बात में बदलकर हवास की तमसीली आग में जला देते हैं। मिसाल के तौर पर एक दफा अर्जुन अपने गौर व फिक्र में मशगूल था, दफातन उसके कानों के पर्दे में मौसीकी की आवाज झनझना उठी। जब उसने सर उठाकर देखा तो उर्वशी यानी एक हूर खड़ी थी जो एक तवायफ थी, सभी उसके हुस्न के आशिक होकर झूम रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उसे अकीदत की नजर से वालिदा की तरह देखा। उस आवाज और शक्ल से पैदा होने वाले उजूब खत्म हो गए, हवास के अंदर ही तहलील हो गए। यहां हवास ही आग है, आग में सुपुर्द की हुई चीज जिस तरह जेरे खाक हो जाती है उसी तरह माहियत बदलकर माबूद के मवाफिक ढाल लेने पर मौजूआत के मुहर्रिक शक्ल, लज्जत, महक, लम्स और लफ्ज भी जल जाते हैं, रियाजत कश पर बुरा असर नहीं डाल पाते। रियाजत कश उन लफ्ज वगैरह में दिलचस्पी नहीं रख पाता, उन्हें कबूल नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे दीगर अल्फाज एक ही रियाजत कश के ऊंचे नीचे हालात हैं, एक ही यज्ञ करने वाले की ऊंची नीची सतह है, ना कि दीगर कहने से कोई जुदा जुदा यज्ञ।
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते।
अभी तक जोग के मालिक ने जिस यज्ञ का जिक्र किया उसमें सिलसिलावार रूहानी दौलत को हासिल किया जाता है, हवास की सारी कोशिशों की एहतियात की जाती है, यानी हवास की सरकशी पर काबू पाया जाता है, जबरदस्ती हवस पैदा करने वाले हवा से बातिनी के टकराने पर भी उनकी माहियत बदलकर उनसे बचा जाता है। इसकी अगली मंजिल आने पर दूसरे जोगी हजरात तमाम हवास की हरकतों और सांस के कारोबार को रूबरू दीदार के साथ इल्म से रोशन आला रूह मुतलक की हम मर्तबा जोग की आग में जलाते हैं। जब जब्त नफ्स की पकड़ रूह के साथ उसी के मुवाफिक हो जाती है, सांस और हवास का कारोबार भी साकिन हो जाता है, उस वक्त मौजूआत को नमू पजीर करने वाली और माबूद से मुनासिबत दिलाने वाली दोनों ही धारें रूह में महू हो जाती हैं, रूह मुतलक में मकाम मिल जाता है, यज्ञ का समरा निकल आता है। ये है यज्ञ की इंतहा, जिस रूह मुतलक को हासिल करना था उसी में मकाम मिल गया तो बाकी क्या बचा। फिर जोग के मालिक श्री कृष्ण यज्ञ को अच्छी तरह समझाते हैं।
द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता।
तमाम लोग मादी चीजों से यज्ञ करते हैं, यानी रूहानी राह में अजीम इंसानों की खिदमत में अकीदत के साथ जो कुछ बन पड़ता है नजर करते हैं, वो खुद सुपुर्दगी के साथ अजीम इंसानों की खिदमत में धन दौलत लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो कोई अकीदत के साथ फूल पत्ते फल पानी वगैरह कुछ भी मुझे नजर करता है उसे मैं कबूल करता हूं और उसकी आला रिफाह की तकलीफ करने वाला होता हूं। यह भी यज्ञ है, हर रूह की खिदमत करना, गुमराह को रूहानी राह पर लाना मादी चीजों का यज्ञ है, क्योंकि कुदरती तासुरात को जलाने में कादिर है। इसी तरह तमाम इंसान तपो यज्ञ फर्ज मनसबे की तामील में नफ्स खुशी करते हैं, यानी फितरत से पैदा सलाहियत के मुताबिक यज्ञ के अदना और आला हालात के बीच रियाजत करते हैं। इसी राह की कज फहमी में रियाजत कश शुद्र पहला दर्जा खिदमत के जरिए वैश्य रूहानी दौलत इकट्ठा करके क्षत्रिय ख्वाहिश गुस्सा वगैरह के खात्मे के जरिए और ब्राह्मण माबूद में दाखिला पाने की सलाहियत के सतह से हवास को तपाता है। सबको एक जैसी मशक्कत करनी पड़ती है। दरहकीकत यज्ञ एक ही है, हालात के मुताबिक ऊंचे ऊंचे दर्जात से गुजरना पड़ता है। काबिले एहतराम महाराज जी कहते थे कि मन के साथ हवास और जिस्म को मकसूद के मुताबिक मशक्कत ही रियाजत कही जाती है। ये मकसद से दूर भागेंगे, इन्हें समेटकर उधर ही लगाओ। तमाम इंसान जोग के यज्ञ का बर्ताव करते हैं। दुनिया में भटकती रूह का दुनिया से मावरा रूह मुतलक से मुलाकात का नाम जोग है। जोग की इस्तेलाह बाप 6 के 23वें श्लोक में दीदनी है। आम तौर पर दो चीजों का मिलन जोग मीजान कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या जोग हो गया? नहीं, ये तो 5 अनासिर यानी आग पानी हवा मिट्टी आसमान से बनी चीजें हैं। एक ही है, दो कहां है? दो तो कुदरत यानी प्रकृति और रब यानी पुरुष है। कुदरत में कायम रूह अपनी ही दायमी शक्ल रूह मुतलक में दाखिला पा जाती है। तो कोई कुदरत रब यानी पुरुष में तहलील हो जाती है, यही जोग है। लिहाजा कई इंसान इस मीजान में मददगार सरकूबी नफ्स कुशी वगैरह उसूलों का अच्छी तरह बर्ताव करते हैं। जोग का यज्ञ करने वाले और अदम तशद्दुद वगैरह मुश्किल तलब इरादों से मुजयन कोशा इंसान स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च खुद का मुताला हकीकी शक्ल का मुताला करने वाले इल्म का यज्ञ करने वाले हैं। यहां जोग के हिस्सों यम 8 कुदरत वसीला तरीका आसन हब्स दम के नफ्स कुशी अकीदा ध्यान तसव्वुर मुराकिबा को अदम तशद्दुद वगैरह शदीद इरादों से बताया गया है। तमाम लोग मुतालिया करते हैं। किताब पढ़ना तो मुताले की महज इब्तदाई सतह है, खालिस मुताला है, खुद का मुताला जिससे हकीकी शक्ल का हुसूल होता है, जिसका समरा है इल्म यानी बदी ही दीदार यज्ञ का अगला कदम बताते हैं।
अपाले जुह्वति प्राणम् प्राणे पानम् तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा।
तमाम जोगी हजरात जान का रियाह में हवन करते हैं और उसी तरह रियाह का जान में हवन करते हैं। इससे लतीफ हालत हो जाने पर दूसरे जोगी हजरात जान और रियाह दोनों की हरकत को रोककर हब से दम के हामिल हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जान और रियाह कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अनापान तनफ्फुस कहते हैं। इसी को उन्होंने नफ्स आमद और नफ्स खारिज भी कहा है। जान वो सांस है जिसे आप अंदर खींचते हैं और रियाह वो सांस है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों का तजुर्बा है कि आप सांस के साथ बाहरी माहौल के इरादे भी कबूल करते हैं और नफ्स खारिज में इसी तरह बातिनी नेक व बद ख्यालात की लहर फेंकते रहते हैं। बाहरी किसी अज़्म को कबूल न करना जान का हवन है और अंदर इरादों को सरजद ना होने देना रियाह का हवन है। न अंदर से किसी अज़्म का इजहार हो और ना ही बाहरी दुनिया में चलने वाली सोच अंदर इस्तेराब पैदा कर पाए। इस तरह जान और रियाह दोनों की हरकत मुसावी हो जाने पर सांसों का ठहराव यानी घेराव हो जाता है। यही हब से दम है, ये मन पर काबू पाने की हालत है। सांसों का ठहरना और मन का ठहरना एक ही बात है। हर एक अजीम इंसान ने इस मौजू को लिया है, वेदों में इसका बयान है। चतवारी वाक पारमिता पदानी, इसी को काबिले एहतराम महाराज जी कहा करते थे। हो, एक ही नाम का चार दर्जात में विर्द किया जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी उसे कहते हैं जो जाहिर हो जाए, नाम का इस तरह विर्द हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा यानी धीमी आवाज में विर्द, जिसे सिर्फ आप सुने, बगल में बैठा हुआ शख्स भी उस आवाज को न सुन सके। उसका तलफ्फुज हलक से होता है, धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। रियाजत और लतीफ हो जाने पर पश्यंती यानी नाम देखने की हालत आ जाती है, फिर नाम का विर्द नहीं किया जाता। यही नाम सांस में ढल जाता है, मन को नाजिर बनाकर खड़ा कर दें, देखते भर रहे कि सांस कहती क्या है, सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। अजीम इंसानों का कहना है कि यह सांस नाम के सिवा और कुछ कहती ही नहीं। रियाजत कश नाम का विर्द नहीं करता, सिर्फ उससे उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है, लिहाजा इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को नाजिर की शक्ल में खड़ा करना पड़ता है, लेकिन वसीला और ज्यादा बुलंद हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लौ लगा भर दे, खुद ब खुद सुनाई देगा। जपई ना जपावे अपने से आवे, ना खुद विर्द करो ना मन को सुनने के लिए मजबूर करो और विर्द चलता रहे, इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं है कि विर्द की शुरुआत ही ना करें और आ गई अजपा। अगर किसी ने विर्द नहीं शुरू किया तो अजपा नाम की कोई चीज भी उसके पास नहीं होगी। अजपा के माने हैं हम विर्द ना करें लेकिन विर्द हमारा साथ ना छोड़े। एक बार सूरत याद का कांटा लगा भर दे तो विर्द जारी हो जाए और लगातार चलता रहे, इस कुदरती विर्द का नाम है अजपा। और यही है मावराई विर्द, ये दुनिया से मावरा उनसुर रूह मुतलक में दाखिला दिलाती है। इसके आगे विर्द वाणी में कोई बदलाव नहीं है, आला माबूद का दीदार कराकर उसी में महू हो जाती है, लिहाजा इसे मावरा परा कहते हैं। पेश करदा श्लोक में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने सिर्फ सांस पर नजर रखने की हिदायत दी, जबकि आगे खुद ओम के विर्द पर जोर देते हैं। गौतम बुद्ध भी अनापान सती में तनफ्फुस का ही जिक्र करते हैं। बिलाखिर वो अजीम इंसान कहना क्या चाहते हैं। दरअसल शुरू में बैखरी, उससे मध्यमा और उससे बुलंद होने पर विर्द की पश्यंती वाली हालत में सांस पकड़ में आती है। उस वक्त विर्द तो सांस में ढला मिलेगा, फिर विर्द करें क्या, फिर तो सांस को देखना भर है। लिहाजा महज जान रियाह कहा, नाम का विर्द करो ऐसा नहीं कहा। वजह यह है कि कहने की जरूरत ही नहीं। अगर कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे के दर्जात में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, मुर्शिदे कामिल महाराज और हर अजीम इंसान जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं, बैखरी और मध्यमा नाम का विर्त करने के महज दाखिला होने के दरवाजे हैं। पश्यंती से ही नाम में दाखिला मिलता है, परा में नाम का विर्द मुसलसल रवां हो जाता है, जिसमें विर्द साथ नहीं छोड़ता। मन सांस के साथ जुड़ा है, जब सांस पर नजर है सांस में नाम ढल चुका है। अंदर से ना तो किसी अज़्म का उरूज है, ना खारजी माहौल के इरादे अंदर दाखिल हो पाते हैं। यही मन पर फतेह हासिल करने वाली हालत है, इसी के साथ यज्ञ का समरा निकल आता है।
अपरिनियता हारा प्राणान प्राणेषु जुह्वती सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः।
दूसरे लोग जो मुनज्जम खुराक लेने वाले हैं, जान का जान में ही हवन करते हैं। काबिले एहतराम महाराज जी कहा करते थे कि जोगी की खुराक रासिख, आसन मजबूत और नींद अटल होनी चाहिए। खान पान और तफरीह पर काबू रखना बहुत जरूरी है। ऐसे तमाम जोगी जान का जान में ही हवन कर देते हैं, यानी नफ्स आमद पर ही पूरा ख्याल मरकूज रखते हैं, नफ्स खारिज पर गौर नहीं करते। नफ्स आमद हुई तो सुना ओम, फिर नफ्स आमद हुई तो ओम सुनते रहें। इस तरह यज्ञों के जरिए मुतबर्रिक यानी जिनके गुनाह खत्म हो गए हैं, ये सभी इंसान यज्ञ का इल्म रखने वाले हैं। इन हिदायतशुदा तरीकों में से अगर कहीं से भी अमल करते हैं तो वो सभी यज्ञ का इल्म रखने वाले हैं। अब यज्ञ का समरा बताते हैं।
यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम।
अशरफुल अशरफ अर्जुन, यज्ञ शिष्टाम मृत भुजो, यज्ञ जिसकी तखलीक करता है, जिसे बाकी छोड़ता, वो है आबे हयात। इसकी रूबरू जानकारी इल्म है। इस इल्म में जाविदा का लुत्फ लेने यानी उसे हासिल करने वाले जोगी हजरात यान्ति ब्रह्म सनातनम दायमी अबदी परवरदिगार को हासिल करते हैं। यज्ञ कोई ऐसी चीज है जो पूरी होते ही अबदी परवरदिगार में दाखिला दिला देती है। यज्ञ ना करें तो एतराज क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से आरी इंसान को दोबारा ये इंसानी दुनिया यानी इंसानी जिस्म भी हासिल नहीं होता, फिर दीगर अवालिम कैसे आरामदा होंगे? इसके लिए तो गैर इंसान शक्लें यानी योनियां महफूज हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यज्ञ करना तमाम इंसानों के लिए बेहद जरूरी है।
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे।
इस तरह मजकूरा बाला तमाम तरह के यज्ञ वेद की जबान में कहे गए हैं। माबूद की जबान से जिनकी तफसीलात का बयान किया गया है, हुसूल के बाद अजीम इंसानों के जिस्म को परवरदिगार कबूल कर लेता है। माबूद से जुड़ी हुई हालत वाले उन आबिदों की अक्ल महज एक मशीन होती है, उनके वसीले से वो माबूद ही बोलता है। उनकी जबान में इन यज्ञों की तफसील की गई है। इन सब यज्ञों को तू कर्मजान विद्धि अमल से पैदा हुआ समझ, यही पहले भी कह आए हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव, उन्हें इस तरह अमली राह पर चलकर इल्म हासिल कर लेने पर, अभी बताया था यज्ञ करके जो गुनाह से आजाद हो चुका हो वही यज्ञ का हकीकी इल्म रखने वाला है। अर्जुन, तू विमोक्ष से दुनियावी कैद से पूरी तरह आजाद हो जाएगा। यहां जोग के मालिक ने अमल की पूरी शक्ल को साफ साफ बता दिया। वो हरकत अमल है जिससे मजकूरा बाला यज्ञ मुकम्मल होते हैं। अब अगर रूहानी दौलत का हुसूल, मुर्शिद का तसव्वुर, जब्त नफ्स, नफ्स आमद का नफ्स खारिज में हवन, नफ्स खारिज का नफ्स आमद में हवन, जानो रिया की हरकत पर काबू खेती करने से होता हो, तिजारत, नौकरी या सियासत करने से होता हो, तो आप कीजिए। यज्ञ तो ऐसा तरीकेकार है जो पूरा होते ही उसी वक्त परवरदिगार में दाखिला दिला देता है। बाहरी किसी भी काम से आप फौरन माबूद में दाखिला पा जाते हो तो कीजिए। दर हकीकत ये सब के सब यज्ञ गौर फिक्र के बातिनी आमाल हैं, इबादत की अक्कासी है, जिनके जरिए काबिले इबादत माबूद जाहिर होता है। यज्ञ इस काबिले परस्तिश माबूद तक की दूरी तय करने का मुअय्यना खुसूसी तरीकेकार है। ये यज्ञ तनफ्फुस, हब्स दम वगैरह जिस तरीके से मुकम्मल होते हैं उस तरीकेकार का नाम अमल है। अमल के खास माने हैं इबादत, गौर फिक्र। आम तौर से लोगों का कहना है कि दुनिया में जो कुछ किया जाए हो गया अमल, ख्वाहिशात से मुबर्रा होकर कुछ भी करते जाओ हो गया बेगरज अमली जोग। कोई कहता है कि ज्यादा मुनाफे के लिए बेरूनी कपड़ा बेचते हैं तो आप बागरज हैं। मुल्क की खिदमत के लिए अगर आप अपने मुल्क का कपड़ा बेचें तो हो गया बेगरज अमली जोग। पूरी लगन से नौकरी करें, नफा व नुकसान की फिक्र से आजाद होकर तिजारत करें तो हो गया बेगरज अमली जोग। फतेह व शिकस्त की फिक्र से आजाद होकर जंग करें, इंतखाब में हिस्सा लें हो गए बेगरज रियाजत कश। वफात होगी तो नजात मिल जाएगी, दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। जोग के मालिक श्री कृष्ण ने साफ अल्फाज में बताया कि इस बेगरज अमल में मुअय्यना तरीका एक ही है, व्यवसाय यात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना। अर्जुन, तू मुअय्यना अमल को कर, यज्ञ का तरीकेकार ही अमल है। यज्ञ क्या है? तनफ्फुस का हवन, जब्त नफ्स, यज्ञ की तमसील अजीम इंसान का तसव्वुर, हब्स दम अनफास पर काबू, यही मन की फतेहयाबी की हालत है। मन की वसत ही दुनिया है। श्री कृष्ण के ही अल्फाज में इहैव तैर जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, उन इंसानों के जरिए मुतहर्रिक वो साकिन दुनिया पर यही फतेह हासिल कर ली गई जिसका मन मुसावात में कायम है। नेक मन के मुसावात और दुनिया पर फतेह हासिल कर लेने से क्या निस्बत है? अगर दुनिया पर फतेह ही हासिल कर ली तो कयाम कहां पर किया? तब कहते हैं वो माबूद बेऐब और मुसावात का हामिल है। इधर मन भी बेऐब और मुसावात की हालत वाला हो गया, लिहाजा वो माबूद के अंदर मकाम बनाने वाला हो जाता है। लुब लबाब यह है कि मन की वसत ही दुनिया है। मुतहर्रिक व साकिन दुनिया ही हवन की चीजों की शक्ल में है। मन पर पूरी तरह बंदिश होते ही दुनिया की बंदिश हो जाती है। मन पर काबू होने के साथ ही यज्ञ का समरा निकल आता है। यज्ञ जिसकी तकलीफ करता है, इस इल्म जावेदां को हासिल करने वाला इंसान अबदी माबूद में दाखिल हो जाता है। इन सारे यज्ञों के बारे में माबूद में कायम अजीम इंसानों के जरिए बताया गया है। ऐसा नहीं कि अलग अलग फिरकों के रियाजत कश अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही रियासत कश के अदना व आला हालात हैं। ये यज्ञ जिससे होने लगे, इस तरीके का नाम अमल है। पूरी गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो दुनियावी तौर तरीकों कारोबार की तरफदारी करता हो। अक्सर यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ का चबूतरा यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए नजरे आतिश हवन शुरू कर देते हैं। ये एक फरेब है। सामान का यज्ञ यानी दर्भ यज्ञ दूसरा है, जिसे श्री कृष्ण ने तमाम मर्तबे कहा, लेकिन जानवरों की कुर्बानी, चीजों को नजरे आतिश करना वगैरह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
श्रेयां द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
अर्जुन, दुनियावी मालूमता से पूरा होने वाले यज्ञ के मुकाबले इल्म का यज्ञ, जिसका समरा इल्म यानी रूबरू दीदार है, यज्ञ जिसकी तकलीफ करता है, उस लाफानी उनसुर की समझ का नाम इल्म है। ऐसा यज्ञ अफजल है, आला इफादी है। ऐ पार्थ, तमाम आमाल इल्म में खत्म हो जाते हैं, परिसमापत्ते अच्छी तरह तहलील हो जाते हैं। इल्म यज्ञ का आखिरी अंजाम है। उसके बाद अमल करने से ना कोई फायदा है और ना छोड़ देने से उन अजीम इंसानों को कोई नुकसान ही होता है। इस तरह मादी मालूमता से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ हैं, लेकिन इस यज्ञ के मुकाबले में जिसका समरा रूबरू दीदार है, इस इल्म के यज्ञ के बनिस्बत बेहद कम है। आप करोड़ों का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ के चबूतरे बना लें, सही राह पर मालूमता लगाएं, आबिद आरिफ अजीम इंसानों के खिदमत में खर्च करें, लेकिन इस इल्म के मुकाबिल बेहद कम हैं। दर हकीकत यज्ञ तनफ्फुस का है, जब्त नफ्स का है, मन पर काबू पाने का है। जैसा श्री कृष्ण भी बता आए हैं, इस यज्ञ को हासिल कहां से किया जाए, इसका तरीका कहां से सीखें? मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों में मिलेगा या किताबों में? मुकद्दस मकामात के सफरे जियारत में मिलेगा या पाक नदियों तालाबों में गुसल करने से मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, उसका तो एक ही मखजन है, उनसुर में कायम अजीम इंसान। जैसे
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।
लिहाजा अर्जुन, तू रमज शनास अजीम इंसान की खुर्बत में जाकर अच्छी तरह बा अदब झुककर यानी जबी साई और आदाब करके गुरूर से आरी हो, पनाह में जाकर अच्छी तरह खिदमत करके छल कपट से दूर सवाल करके उस इल्म को समझ, वो उनसुर को जानने वाले आलिम हजरात तुझे उस इल्म की नसीहत देंगे, राह अमल पर चला देंगे। खुद सुपुर्दगी के एहसास के साथ खिदमत करने के बाद ही इस इल्म को सीखने की सलाहियत आती है। रमज शनास अजीम इंसान उनसुरे आला रूहे मुतलक का बदी ही दीदार करने वाले हैं। वो यज्ञ के खास तरीके का इल्म रखने वाले हैं और वही आपको भी तामील देंगे। अगर यज्ञ कुछ और होता तो आलिम रमज शनास की क्या जरूरत थी? खुद श्री कृष्ण के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था, वो उसे रमज शनास के पास क्यों भेजते हैं? दर हकीकत श्री कृष्ण एक जोगी थे। उनका ख्याल है कि आज तो तलबगार अर्जुन मेरे सामने मौजूद है, मुस्तकबिल में तलबगारों को कहीं शक ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी पराह में जाएं। लिहाजा उन्होंने साफ किया कि रम्स आशना के पास जा, वो आलिम हजरात तुझे नसीहत देंगे। और
यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि।
उस इल्म को उनके जरिए समझकर तू इस तरह फिर कभी फिरेफ्तगी में नहीं पड़ेगा। उनसे दी गई जानकारी के जरिए उस पर चलते हुए तू अपनी रूह के माबैन सभी जानदारों को देखेगा, यानी सभी जानदारों में इसी रूह को देखने की तुझमें सलाहियत आ जाएगी। जब हर जगह एक ही रूह का मुजाहिरा करने की सलाहियत आ जाएगी, उसके बाद तू मुझ में दाखिल होगा। लिहाजा इस रूह मुतलक को हासिल करने का जरिया रमज शनास अजीम इंसान के वसीले से है। इल्म के मुतालिक दीन और दायमी हकीकत के बारे में श्री कृष्ण के मुताबिक किसी रमज शनास से ही पूछने का तरीका है।
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि।
अगर तू सारे गुनाहगारों से भी ज्यादा गुनाह करने वाला है, तब भी इल्म की कश्ती के जरिए सभी गुनाहों के समंदर को बिला शक अच्छी तरह पार कर किनारा पालेगा। इसका मतलब आप ये ना लगा लें कि ज्यादा गुनाह करके कभी भी नजात हासिल कर लेंगे। श्री कृष्ण का मतलब सिर्फ यही है कि कहीं आप इस शक में ना रहें कि हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हमें नजात नहीं मिलेगी, ऐसी कोई गुंजाइश ना निकालें। लिहाजा श्री कृष्ण हिम्मत अफजाई और यकीन दिलाते हैं कि सारे गुनाहगारों के गुनाहों के अंबोह से भी ज्यादा गुनाह करने वाला है, फिर भी रमज आशनाओं से हासिल इल्म की कश्ती के जरिए तू बेशक सारे गुनाहों से अच्छी तरह किनारा पा जाएगा। किस तरह?
यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।
अर्जुन, जिस तरह आग के शोले ईंधन को खाक कर देते हैं, ठीक उसी तरह इल्म की आग सारे आमाल को जलाकर खाक कर देती है। ये इल्म का इब्तिदाई मकाम नहीं है जहां से यज्ञ में दाखिला मिलता है, बल्कि ये इल्म यानी बदीही दीदार के आखिरी अंजाम की अक्कासी है, जिसमें पहले गैर नस्ली आमाल जलकर खाक होते हैं, फिर हुसूल के साथ गौर फिक्र के आमाल भी इसी में तहलील हो जाते हैं। जिसे हासिल करना था हासिल कर लिया, अब आगे गौर फिक्र करके किसकी तलाश करें? ऐसा बदीही दीदार करने वाला आलिम सारे मुबारक नामुबारक आमाल का इख्तिताम कर लेगा। वो बदीही दीदार होगा कहां? बाहर होगा या बातिन में? इस पर कहते हैं,
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति।
इस दुनिया में इल्म के मुकाबले पाक करने वाला बेशक कुछ भी नहीं है। उस इल्म यानी बदी ही दीदार को तू खुद यानी दूसरा नहीं, जो कि तकमीली हालत में यानी शुरू में नहीं, अपनी रूह के अंदर दिल की दुनिया में ही महसूस करेगा, बाहर नहीं। इस इल्म के लिए कौन सी सलाहियत दरकार है?
जोग के मालिक के ही अल्फाज में,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति।
अकीदतमंद मुस्तैद और नफ्स कुछ इंसान ही इल्म हासिल कर पाता है, बाअकीदत तजस्सुस नहीं है तो रमज शनास की पनाह में जाने पर भी इल्म नहीं हासिल होता। सिर्फ अकीदत ही काफी नहीं है, अकीदतमंद कमजोर कोशिश वाला भी हो सकता है। लिहाजा अजीम इंसान के जरिए हिदायत करदा रास्ते पर मुस्तैद होकर आगे बढ़ने की लगन जरूरी है। इसके साथ ही सारे हवास की एहतियात लाजमी है, जो ख्वाहिशात से अलग नहीं है। उसके लिए बदी ही दीदार यानी इल्म का हुसूल मुश्किल तलब है। सिर्फ अकीदतमंद अमल में लगा हुआ नफ्स कुछ इंसान ही इल्म हासिल करता है। इल्म को हासिल करो, वो उसी वक्त हकीकी सुकून को हासिल कर लेता है जिसके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यही सुकून की आखिरी मंजिल है, फिर वो कभी बेसुकून नहीं होता। और जहां अकीदत नहीं है,
अज्ञश्चा श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।
जाहिल जो यज्ञ के खुसूसी तौर तरीके से नावाकिफ है और बिला अकीदत वो शक व शुबह वाला इंसान इस रूहानी रास्ते से भटक जाता है। इनमें भी शक व शुबह में पड़े हुए इंसान के लिए ना तो सुख है, ना दोबारा इंसानी जिस्म है और ना रूह मुतलक ही। लिहाजा रमज शनास अजीम इंसान के पास जाकर इस रास्ते के शक व शुबह का इजाला कर लेना चाहिए, वरना वो हकीकत से रूबरू कभी नहीं हो पाएंगे। फिर कौन पाता है?
योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयं आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय।
जिसके आमाल जोग के जरिए माबूद में तहलील हो चुके हैं, जिसके तमाम शक व शुबह माबूद के रूबरू इल्म के जरिए खत्म हो गए हैं, माबूद से जुड़े हुए ऐसे इंसान को अमल अपनी बंदिश में नहीं ले पाते। जोग के जरिए ही आमाल का खातिमा होगा, इल्म से ही शक मिटेगा। लिहाजा श्री कृष्ण कहते हैं,
तस्मादज्ञान संभूतम् हृत्स्थम् ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत।
भरत के खानदान वाले अर्जुन, तू जोग में अपना मकाम और जहालत से पैदा हुए दिल में मौजूद अपने इस शक को इल्म की तलवार से काट, जंग के लिए खड़ा हो। जब बदी ही दीदार में खलल डालने वाला शक का तमसीली दुश्मन दिल के अंदर है तो तू बाहर किसी से क्यों लड़ेगा? दर हकीकत जब आप गौर व फिक्र के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तब शक से पैदा खारजी खसाइल का खलल की शक्ल में होना फितरी है। ये दुश्मन की शक्ल में खौफनाक हमला करते हैं। एहतियात के साथ यज्ञ के खुसूसी तरीके का अमल करते हुए इन उयूब से छुटकारा पाना ही जंग है, जिसका समरा आला सुकून है। यही आखिरी फतेह है, जिसके पीछे शिकस्त नहीं है। मगज़े सुखन निष्कर्ष। इस बाब के शुरू में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा कि इस जोग को शुरू में मैंने सूरज के लिए कहा, सूरज ने मौर्य से अव्वल मनु से और मौर्य से अव्वल मनु ने इक्ष्वाकु से कहा और शाही आरिफ हजरात ने जाना। मैंने خواہ غیر مرئی مقام والے نے کہا، عظیم انسان بھی غیر مرئی شکل والا ہی ہے، جسم تو اس کے رہنے کا محض مکان ہے۔ ایسے عظیم انسان کی زبان میں معبود ہی اجرا ہوتا ہے، ایسے کسی عظیم انسان سے جوگ سورج کے ذریعے متحرک ہوتا ہے، اس اعلی نور کی شکل کا نشریہ سانس کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا سورج سے کہا، سانس میں متحرک ہو کر وہ تاثرات کی شکل میں آ گئے، سانس میں اندوختہ رہنے پر وقت آنے پر وہی من میں عزم بن کر آتا ہے، اس کی عظمت سمجھنے پر من میں اس جملے کے بنسبت خواہش بیدار ہو جاتی ہے اور جوگ عملی شکل لے لیتا ہے۔ بتدریج ترقی کرتے کرتے یہ جوگ مال و زر اور کامیابیوں والے شاہی عارفانہ درجے تک پہنچنے پر ختم ہونے کی حالت میں جا پہنچا ہے۔ لیکن جو محبوب بندہ ہے، لا شریک دوست ہے، اسے عظیم انسان ہی سنبھال لیتے ہیں۔ ارجن کے سوال کرنے پر کہ آپ کی پیدائش تو اب ہوئی ہے، جوگ کے مالک شری کرشن نے بتایا کہ غیر مرئی و لافانی پیدائش سے مبرہ اور سبھی جانداروں میں جلوہ گر ہونے پر بھی اپنی کارسازی جوگ کے عمل کے ذریعے اپنی تینوں صفات والی قدرت کو قابو میں کر کے میں ظاہر ہوتا ہوں۔ ظاہر ہو کر کرتے کیا ہیں؟ قابل عمل چیزوں کی حفاظت کرنے اور جن سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، اعلی دین روح مطلق کو اٹل کرنے کے لیے میں از اول تا آخر پیدا ہوتا ہوں۔ میری وہ پیدائش اور عمل پر نور ہے، اسے صرف رمز آشنا ہی جان پاتے ہیں۔ معبود کا نزول تو کلیوگ کی حالت سے ہی ہوتا ہے اگر سچی لگن ہو، لیکن شروعاتی ریاضت کش سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ معبود بول رہے ہیں یا یوں ہی اشارے مل رہے ہیں۔ آسمان سے کون بولتا ہے؟ مہاراج جی بتاتے تھے کہ جب معبود مہربان ہوتے ہیں، روح سے رتبان ہو جاتے ہیں، تو کھمبے سے، درخت سے، پتے سے، خلا سے، ہر جگہ سے بولتے اور سنبھالتے ہیں۔ ترقی ہوتے ہوتے جب عنصر اعلی روح مطلق ظاہر ہو جائے، تبھی نسبت حاصل کرنے کے ساتھ ہی وہ صاف طور سے سمجھ پاتا ہے۔ لہذا ارجن، میری اس شکل کو رمز شناسوں نے دیکھا اور مجھے جان کر وہ اسی وقت مجھ میں ہی داخل ہو جاتے ہیں، آواگون سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے معبود کے اوتار کا طریقہ بتایا۔ وہ کسی عاشق کے دل میں ہوتا ہے، باہر ہرگز نہیں۔ شری کرشن نے بتایا کہ مجھے اعمال نہیں باندھتے، یعنی میرے ساتھ عمل کی بندش نہیں ہے، اور اس سطح سے جو جانتا ہے اس کے لیے بھی عمل کی بندش نہیں ہے۔ یہی سمجھ کر نجات کے طلبگار انسانوں نے عمل کی شروعات کی تھی۔ انسان اور علم حاصل کر لینے پر طالب نجات ارجن، یہ حصول یابی حتمی ہے۔ اگر یگیہ کیا جائے، یگ کی شکل بتائی، یگ کا سمرا اعلی عنصر اعلی سکون بتایا، اس علم کو حاصل کہاں سے کیا جائے؟ اس پر کسی رمز شناس کی قربت میں جانے اور انہی طریقوں سے پیش آنے کو کہا، جس سے وہ عظیم انسان مہربان ہو جائیں۔ جوگ کے مالک نے صاف کیا کہ وہ علم تو خود عمل کر کے پائے گا، دوسرے کے عمل سے تجھے نہیں ملے گا، وہ بھی جوگ کی کامیابی کے دور میں حاصل ہوگا، شروع میں نہیں۔ وہ علم یعنی بدیہی دیدار دل کی دنیا میں ہوگا، باہر نہیں۔ عقیدت مند، مستعد، نفس کش اور شک و شبہ سے عاری انسان ہی اسے حاصل کرتا ہے۔ لہذا دل میں موجود اپنے شک کو بیرا کی تلوار سے کاٹ، یہ دل کی دنیا کی جنگ ہے، خارجی جنگ سے گیتا میں بیان کی گئی جنگ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس باب میں جوگ کے مالک شری کرشن نے خاص طور سے یگ کی شکل کو صاف کیا اور بتایا کہ یگ جس سے پورا ہوتا ہے اسے کرنے یعنی طریقہ کار کا نام عمل ہے۔ عمل کو اچھی طرح اسی باب میں صاف کیا۔ لہذا اوم تتسدیتی श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नाम चतुर्थो अध्याय। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता की तमसील उपनिषद वो इल्म तसव्वुफ इल्म रियाजत के मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में अमली जोग की तशरीह नाम का चौथा बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नाम चतुर्थो अध्याय। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गड़ानंद जी के जरिए लिखी श्रीमद् भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में अमली जोग की तशरीह यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नाम का चौथा बाब मुकम्मल हुआ।